تھوڑی سی بات غصے پہ کروں گی، گو کہ وقت اتنی گنجائش تو نہیں دیتا۔ یہ پوری ایک ورک شاپ تھی جو ہم نے الحمدللہ ایک موقع پہ کی تھی، 4-5 گھنٹے میں ایٹ لیسٹ یہ ٹاپک پورا ہوتا ہے اینگر مینجمنٹ کے نام پہ۔ کچھ چیزیں اسی میں سے میں آپ کے سامنے شیئر کروں گی تاکہ ہم اس دورے قرآن کے دوران اپنے دل کو غصے سے پاک کر سکیں۔ کیا غصہ بری چیز ہے؟ بری چیز نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں لفظ کاظمین کا ہے، اور کزوم کہتے ہیں بوٹل کے ڈھکن کو بند کرنا، ٹائٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ غصہ فطرت میں اللہ نے رکھا ہے، اپنی ذات سے، اپنی اصل سے غصہ نہ تو بری چیز ہے نہ اچھی چیز ہے، صرف اس کو ٹیم کرنا ہے۔ غصہ انرجی ہے، آپ دیکھیں غصے میں بہت بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں نا، بالکل اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنے غصے کو ٹیم کرنا ہے۔ اگر ہمارا غصہ اللہ کے دین کے لیے بہت اچھا ہے، کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ آنا ایمان کی علامت ہے، غلط کام کرتے دیکھ کر غصہ نہ آنا بالکل درست نہیں ہے۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ بولا غصے کے بارے میں کہ غصے کی مثال جو ہے یہ شکاری کتے کی طرح ہے، اگر اس کو سدھا لو تو وہ تمہارے لیے شکار پکڑ کے لائے گا، اور اگر تم اس کو نہیں سدھاتے تو وہ خود تمہیں کھا جائے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو غصہ ہمیں کب کھاتا ہے؟ جب ہم اس کو ٹیم نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے غصے کو کرنا کیا ہے؟ پہلے تو سمجھنا ہے کہ غصہ ہوتا کیا، پھر اس کے بعد اس غصے کے اسباب ڈھونڈنے، اور اس کے بعد اس کے علاج ڈھونڈنے۔ انہی تین چیزوں پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس غصے کی وجہ ڈھونڈنی ہے کہ غصہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ عموماً 7 بڑی وجوہات ہوتی ہیں غصے کی، اسباب کہہ لیں، وجوہات کہہ لیں، ہر بندے کی مختلف وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو غصہ آتا ہے یا آپ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی کو بہت غصہ آتا ہے تو آپ اس کی وجہ ڈھونڈیں، انشاءاللہ اینڈ پہ علاج ڈھونڈیں گے تو اس میں بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے غصے کے آنے کی، توقعات، امیدوں اور ارادوں کا پورا نہ ہونا۔ کچھ ہوپس تھیں آپ کو، آپ نے کچھ خواب دیکھے ہوئے تھے، آپ کہتے ہیں ہائے میری وہاں شادی ہو جائے گی، نہیں ہوئی، جاب وہاں ملے گی، نہیں ملی، بچوں سے جیسی امیدیں لگائی ہوئی تھی وہ نہیں ویسے نکل سکے، خواہش نہیں تھی۔ یعنی ماضی میں انسان نے جو کچھ سوچا ہوتا ہے نا وہ چیز ہوئی نہیں، اس پہ پھر جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، بندہ فرسٹریٹڈ ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ کے معنوں میں آپ کہہ لیں، غصہ آنے لگتا ہے، ریئیکشنری ہونے لگتا ہے، اس میں تقدیر سے الجھتا ہے، لوگوں سے چڑچڑا ہونے لگتا ہے، غصہ آتا ہے، بدلہ لیتا ہے، انتقام کرتا ہے، اس طریقے سے غصہ آتا ہے۔ اگر کسی کو اپنا غصہ اس وجہ کا دکھے تو اس کا علاج کیا ہے؟ قدم قدم، چھوٹا چھوٹا قدم لے۔ ایک اس کے علاج کا طریقہ ہے کہ اپنی سوچ کے ذریعے سے آپ علاج کریں۔ مثلا سوچیں کہ کیا ہوا، جو میں نے سوچا تھا نہیں ہوا تو قادر تو اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کو سوچیں۔ پھر یہ سوچیں کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ ناراض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اپنی مینٹل سیٹنگ کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پہ اپنے آپ کو راضی رکھیں، کیونکہ ایسا شخص جو ہوتا ہے یہ تقدیر سے بہت جھگڑتا ہے۔ پھر دوسرا طریقہ علاج جو ہے وہ عمل کے ذریعے ہے، مثلا قرآن پاک سے ایسی مثالیں ڈھونڈیں جو دنیا کی بے ثباتی پہ ہیں۔ اچھا نہیں ملا نا مجھے جو میں نے سوچا تھا، تو یہ دنیا کتنے دن رہنی ہے؟ مل بھی جاتی تو میں نے چھوڑ ہی جانا تھا نا۔ جو ہی آپ سوچیں گے نا آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے جو بات سوچی تھی وہ درست نہیں تھی، اور آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کریں گے۔ ہو گیا، ختم ہو گئی بات۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس غصے پہ یا اللہ کے اس فیصلے پہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے جو سزا ہے جہنم کی، اس کو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو اس غصے کی جو بنیادی وجہ ہے نا، حب دنیا، دنیا کی محبت، اس کو کم کریں، اس دنیا کی اصل حقیقت سمجھیں گے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اور باقی ساری چیزیں دوسری طرف چلی جائیں گی۔ اس غصے کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے پتہ چلے کہ میرا غصہ جو ہے وہ توقعات کے ٹوٹنے پہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ کہ آپ اپسیٹ رہتے ہیں، فرسٹریٹڈ رہتے ہیں، جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اریٹیٹ ہوئے رہتے ہیں ہر وقت، یہ پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو غصے کی ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ اس انسان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ اب اس زیادتی کا پھر دو طرح سے تعلق ہے، یا تو ماضی میں ہوئی تھی یا اسٹل ابھی ہو رہی ہے۔ اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر کوئی زیادتی ہوتی ہے نا، تو وہ اگر تو ماضی سے اس کا تعلق ہے تو کیسے علاج کریں گے؟ ہو گئی بات، چھوڑ دو، کسی نے کہہ دیا، اب کیا ہوا، مجھے اس پہ اجر ہی تو ملا ہوگا نا۔ اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اذیت دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو اپنے اپنے ہونٹ چھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، بعض یہ انگلیوں کے پٹاخے پھوڑنے لگتے ہیں، پٹاخے نکالنا جس کو بولتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی اسکن چھیلتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ دیواروں سے جیسے پینٹ جو ہے وہ اکھاڑنا شروع کرتے ہیں۔ یہ اس جس کی علامت ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میرے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جس نے آپ پہ زیادتی کی ہے نا، اب دو طرح کی صورتیں آ رہی ہیں، یا تو آپ بھی اس سے زیادتی کر سکتے ہیں، آپ کے بس میں ہے وہ بندہ، और दूसरी सूरत है कि वो आपके बस में नहीं है। जब वो आपके बस में होता है ना, फिर तो आप खूब उसको खरी खरी सुना लेते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दे लेते हैं। लेकिन जब आपके वो बस में नहीं होते, तो उससे असल में ये गुस्सा पैदा होता है जिसकी वजह से ये बात होती है। तो आप माजी का वाक़या था तो उसको तो फिर माफ़ कर दें, फ़ायदा क्या, वो तो अपना नुकसान करके चला गया। और एंड पे हम देखते हैं कि गुस्से के ओवरऑल जो इफ़ेक्ट्स दूर करने के, उसमें इंशाल्लाह इसका इलाज मिलेगा। लेकिन अगर वो शख्स अभी भी मौजूद है, आपका कोई रिश्तेदार है, वो आपको हमेशा टीस करता है, दुख देता है, कोई ताना देता है, कोई इल्ज़ाम देता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उस वक्त आप फिर अपने आप को चेक करें। आप कहें कि क्या हुआ ये कर रहे, यानी पिछली जो बात थी ना कि अब वो नहीं दे रहा, तो उस पर भी आप अपने आप को फील करवा सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब तो वो काम ख़त्म हो गया ना। लेकिन अगर अभी ज़्यादती हो रही है ना, तो उसका पहला तरीका क्या होता है कि जो आपसे ज़्यादती करे ना, उसको एहसास दिलाएं, बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब से, आवाज़ को जितना दबा सके दबा के उसको बताएं कि देखें मुझे आपकी ये बात से तकलीफ़ हुई है, मुझे दुख होता है आपकी इस बात से। बाज़ लोग होते हैं ना, वो ख्वाम ख्वाह पिंच करते हैं, जैसे आपने कुछ देखा होगा लोग पंचिंग बैग से खेलते हैं एक्सरसाइज के नाम पे, हर वक्त उठते बैठते ताने पाबंदियाँ, यहाँ नहीं जा सकती, वो नहीं कर सकती, माँ के घर नहीं जा सकती, बाप के नहीं जा सकती, बच्चे के नहीं जा सकती, हर एक का एक अपना हाल होता है ना। क्योंकि आप खामोश रहेंगे ना, बाद में हम कहते हैं सब्र कर लेते हैं, नहीं, ये सब्र नहीं होता। आप चुप रहेंगे तो दूसरे को मौका दे रहे हैं कि वो आप पे जुल्म करता रहे, ऐसा होता है कि नहीं। बस आप देखिए कि बाज़ दफ़ा औलाद मुसर हो जाती है, अब माँ कहती है कि मैं इसको क्या बोलूँ, माँ को पता है कि ये बच्ची जो मेरे साथ बात कर रही है, इससे इसको गुनाह हो रहा होगा, इसके दर्जे कम हो रहे होंगे, तो फिर माँ के चलो मैं सब्र कर लेती हूँ। हर किस सब्र ना करें, उसको प्यार से बिठाएं, बात करें, बेटा देखें आप इस तरह करते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आप चुप रहेंगी ना तो वो और ज्यादती करेगी, जुल्म बढ़ जाता है, दूसरे को एहसास ना दिलाएं। फिर इसी तरह अगर आप देखें एहसास दिलाया फिर भी कोई बात ना आए, तो दूसरा दर्जा क्या है कि आप बराबर का बदला ले लें, मगर ज़्यादती नहीं करनी। ये बड़ी सेंसिटिव इश्यू होता है कि इसके ऊपर आप बराबरी कर लें तो कर लें, ज़्यादा ना करें। तीसरा मुमकिन तरीका क्या है कि आप इससे भी हटते हैं ना, तो उससे अपने आप को थोड़ा सा दूर कर लें, ज़हनी तौर पे दूर कर लें, उसकी बातों को अहमियत ना दें, जज्बाती तौर पे, हैजानी तौर पे दूर हो जाएं। जैसे आप अगर एक देखें ना कि जानवर है वो, अगर वो काटने लग गया तो आप अपने आप को उससे दूर कर लेंगे ना, बस सिर्फ ऐसा भी मुमकिन नहीं होता। आप एक घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं, रिश्ता ही ऐसा छोड़ नहीं सकते, अब कोई बेटी माँ अलग थोड़ी होंगी, अब क्या करें, फिर सब्र कीजिए, फिर वो सारे दर्जे सोचें जो साबिर के हैं। और याद रखें साबिर बनने में और मज़लूम बनने में बहुत फ़र्क है। साबिर होना अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी होना है, और मज़लूम होना खुद को कुड़ाना है, बीमार हो गए, रंग जल गए। बाज़ माँ बाप कहते हैं हमारी इस बच्ची का तो रंग जल गया, कुड़ कुड़ कैसी हो गई, क्यों कुड़ने दिया आपने उसको, उसको तरीका सिखाएं कि कैसे एंटरटेन करते हैं, क्योंकि मज़लूम के अंदर गुस्सा तो पकता ही है ना। फिर उस पर अजर की उम्मीद रखें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा। तीसरी वजह जो गुस्से के आने की, वो उजलत है, जल्दबाजी। जब हम किसी काम के लिए जल्दी जल्दी कोई काम करने की ख्वाहिश में होते हैं ना, तो रस्ते में रुकावटें आती हैं तो गुस्सा आता है। वैसे भूख लगी हुई है, जल्दी जल्दी खाना नहीं, खाना नहीं। बाज़ मर्द तो सिर्फ घर में बीवियों पर इसीलिए गुस्से में होते हैं, मेरे आने तक तुमने बर्तन नहीं लगाए, खाना नहीं पकाया। बाज़ दफ़ा आप गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं तेज़ जाना चाहते हैं, तो पता चलता है रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, ज़ोर ज़ोर से स्टेयरिंग पे हाथ मार रहे हैं, ये सारी चीज़ें उजलत में आती हैं। इसकी वजह अमूमन बैड मैनेजमेंट होती है। जो काम आप देर से शुरू करते हैं फिर वो वक्त पे हो नहीं पाता, तो आप बच्चों पे गुस्से हैं। पहले आप सोते रहे, जब मेहमानों के आने में एक घंटा रह गया तो आपने सारे चूल्हे खोले, अब एक पतीली गिर रही है, एक उठ रही है, कहीं से ऑयल गिर रहा है, कहीं से आपकी सब्ज़ी गिर रही, छुरी नहीं मिल रही। तो इसका इलाज क्या है कि वक्त पे काम शुरू करें। ऐसा गुस्सा जो उजलत की वजह से ना, इसका इलाज हेल्म में है, हेल्म तहम्मुल के अंदर, बुर्दबारी, ठंडे हो जाएं, कोई बात नहीं, जो होगा हो जाएगा। चौथी वजह जो गुस्से की होती है वो जिस्मानी सेहत है, मेडिकल रीजंस होती हैं। बस दफ़ा इंसान ऐसी कड़वी कड़वी दवाइयां खा रहा होता है कि जिसकी बुनियाद पे फिर वाकई वो अपने आप को बहुत मजबूर समझता है। बहुत आम इंसान भी गुस्से वाला बन जाता है ऐसे वक्त में। तो ये बीमारी गुस्से की जो ये टेम्परेरी है, क्योंकि इंशाल्लाह बीमारी दूर हो गई, जो ही दवाई खा ली आप अपने आप को ठीक महसूस करेंगे, तो आप अपने आप को उससे निजात पा लेंगे। इसके लिए ये है कि आप अपने आप को मज़ूर समझें, या अपने आप को खुद ही ट्रीट करें, इसका इलाज आप खुद कर सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिस्मानी सेहत के बाद जो एक पाँचवीं वजह होती है गुस्से की, वो तकब्बुर है, लाडली, बड़े। बाज़ दफ़ा बचपन में बड़े लाड देखे होते हैं, नाजुक मिजाजी, माँ बाप ने सर पे चढ़ा लिया लाड देख देख के, शौहर के घर में गया वो क्यों देखें लाड आपके, सास को क्या लगे आपके कमर में दर्द है या आपके दांत में दर्द है। अम्मा तो फौरन कहती थी काम छोड़ दो, हाथ में छुरी लग गई तो सास ने कहना पट्टी बांध लो और ज़रा प्याज पूरे काट लो जल्दी से, फ़र्क हो गया ना। अब क्या करें, अब ऐसी बातें लाट दिखाने वाली आते होती हैं। ऐसे बंदे के अंदर कुव्वत बर्दाश्त की कमी होती है, उसको ये बढ़ानी चाहिए। गिल्ट की बजाय बाज़ दफ़ा अपने तकब्बुर को फ़ख्र समझने लगते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि फिर ऐसे लोग मुंह से भी कुछ गलत जुमले बोलने लगते हैं, और इस तकब्बुर के जुमले को बाज़ लोग इतना ज़्यादा ग्लैमराइज करते हैं कि अपने बड़ों का नाम लेते हैं। फलां तो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते, यानी तकब्बुर नहीं करना। फिर ऐसे लोग नौकरों को मारना, गालियाँ देना, अरे छोटी, इस तरह के जुमले बोलना, ये बहुत ही बुरी बात है, ये दुरुस्त चीज़ नहीं होती। फिर छठी वजह जो होती है ना गुस्से आने की, वो है तवज्जो हासिल करने के लिए। बात लोग तो तवज्जो हासिल करने के लिए गुस्सा करते हैं, और इसके अंदर मीडिया ने बड़ा खूबसूरत किरदार अदा किया। आज हमारे दौर में ग्लैमराइज्ड कर दिया गुस्से को फिल्मों और कमर्शल्स ने। हीरोइन गुस्से में पाँव पटकती हुई आती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं, और जो ही उन्होंने ज़रा नखरे दिखाए, हीरो साहब फूल पेश कर रहे हैं, चाय बना के पेश कर रहे हैं, कभी एक खिड़की के अंदर से निकल के दे रहे हैं और कभी दूसरी में। अब एक सीधी सादी खातून बैठी देख रही थी ये ऐड, कहती अच्छा तो मैं किस हीरोइन से कम हूँ, देखना आज मैं भी हो जाए, फिर जो होता है। अब आप पूरी तैयारी में बैठे थे कि मियाँ के आने पर ज़रा आप खूब तैयारी करेंगे, और मियाँ ने अभी देखना मेरे लिए घूम घूम के और कलाबाजियाँ लगानी है और उछला खुद ही शुरू कर देनी है। आपने जब आके उनको देखा, ज़रा कोई आपने गुस्से का जुमला बोला, उसने कहा तुम्हें क्या हुआ है, बाहर से थके हुए जाओ भाड़ में जाओ। फिर अब वो बातें चार सुना के चले गए, और मैं जा रहा हूँ बाहर, खाना भी नहीं खाऊँगा। आप कहते हैं ये क्या हुआ, वो सारा हीरोइनिज्म ख़त्म हो गया ना, तो ये चीज़ निकालिए। फिर बाज़ दफ़ा होता क्या कि वो बस वो सास ने जादू कर दिया ना, ये मैं घर में आते हैं तो गुस्से में आते हैं। बाज़ औरतों को ये शिकवा होता है कि घर में आते हैं तो इनको गुस्सा आ जाता है, बाहर बड़े अच्छे होते हैं। उसकी वजह नहीं देखते कि हमारा अपना अंदाज उनके साथ कोई फोहट पने का तो नहीं। तो बहरहाल इसकी डिटेल्स आपने सुननी हो तो ब्यूटीफाई योरसेल्फ के नाम पे एक सेशन हुआ था, उसमें हमने डिटेल की थी, उसमें सुन सकते हैं। मैं तो सिर्फ चंक्स ही दे रही हूँ इस वक्त आपको। सातवीं वजह जो होती है वो होती है मोहब्बत के इजहार के लिए गुस्सा करना। ये कौन करती हैं, ये माएँ करती हैं। ये बड़ा मारूफ गुस्सा है माओ का, यानी बच्चे से प्यार है ना, अब बच्चा बीमार हुआ तो कहती है और पियो ठंडा पानी, और जाओ बगैर स्वेटर के बाहर, हैं कहा था ना अच्छा हुआ, अच्छा वो बेचारा पहले जला हुआ कट लगा के आ गया, और पकड़ो छुरी, उसको उस छुरी के कट का इतना दर्द नहीं होगा जो माँ के स्तनों का होगा। इस पर आप अपने आप को सब्र में रखें, क्योंकि कंट्रोल करना होता है ना। फिर आप देखिए कि गुस्से का यानी इलाज, आपको गुस्सा आ रहा है या दूसरे को आ रहा है, क्योंकि मेरा दिल है कि इसको इंशाल्लाह ताला आपको बाद में अगर किसी मौके पे हुआ तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत मौजू है, लेकिन वाकई वक्त इजाज़त नहीं देता, या आज अपने टाइम को फ्री कर दें तो फिर मैं इसको बोलती जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर आखिरी चीज़ें जो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी, कि दूसरे को गुस्सा आया हुआ तो क्या करें, क्योंकि हम ये तो मानते ही नहीं कि हमें भी आता है, हम तो ये मानते ही नहीं कि हम गुस्से वाले, कहते हैं मुझे तो कभी नहीं आया। अब मिसाल है किसी को गुस्सा आया हुआ, सामने आपके कोई खड़ा गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले तो आप ये करें कि आप अपने आप को उस वक्त ज़हनी तौर पे उससे अलग करें। आपके पता नहीं किसको कह रहे हैं, मुझे तो नहीं कह रहे हैं, ये कोई और ही होगा, ये मैं तो नहीं हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। यानी उसकी बात को फौरन आप फील ना करें, इधर उधर हो जाए, जगह छोड़ दें, इधर से उधर हो जाए। फिर दूसरी बात है कि आप गुस्सा सुन के आपको कह रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, मुझे पता नहीं, मुझे ही कह रहे हैं, हाँ तो अब आप क्या करें, अब दिल चाह रहे अंदर से आग लगी हुई है ना, जोश है, खोलता है जैसे पानी। फिर आप क्या करें, आप कहें कि 10 गिनूंगी फिर रिएक्ट करूंगी, यानी रिएक्ट करने से पहले 10 गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, उतने में आपका गुस्सा खुद ही चला जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरह का मामला करें कि जिससे बात रफा दफ़ा हो जाए। हाँ, अपना सोचें कि शायद मेरा ही कसूर हो, फौरन अपने आप को एनालिसिस करें कि शायद मेरे एक सुरभ, मैंने सही नहीं किया। मतलब शौहर घर में आए और आते ही एकदम गुस्से में लाल पीले हुए आप बाहर हैं, क्या हुआ, बस आप गुस्से में आते थे, घर आते हैं तो ये होता है, नहीं देखें शायद आपने रास्ते में खूबसूरत सा वॉज रख दिया कि ये सजेगा, आते ही उस बेचारे को ठोकर लगी, उसका नाखून टूट गया। वजह ढूंढे ना, क्या वजह हो गई, घर बहुत गंदा तो नहीं कि घर में आते ही शौहर को गुस्सा आ जाता है, तो वजह मालूम करें। शौहर की बात पता नहीं मैंने क्यों कह दी, ये मेरे मुँह से निकल गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर को तो गुस्सा नहीं आता, लेकिन मैंने अक्सर औरतों से सुना है कि शौहरों को बहुत आता है, लेकिन गुस्सा आता किसी को भी आए तो फिर उसकी रीज़न सोचें बाद में। एक तो ना फौरी रिएक्ट करना उस वक्त, और उस पर लाप पड़े, पीछे से फूंक दें, उन मुँह से नहीं पड़िएगा, वरना सोचेंगे पता नहीं क्या दम कर रही है मेरे ऊपर। हाँ, उनके लिए दिल से दुआ करनी शुरू कर दें। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो फिर बाद में भी मौका देख के आप उसमें कर सकती हैं कि वजह देखें। अगर मिसाल है शौहर का मामला है या घर का कोई ऐसा पर्सन, तो उसके घर वालों से पूछे, कभी बचपन में कोई बात हुई होगी, कोई बात सब आपको पता है कि लोगों के गुस्से में आने की ना कुछ वजूहात उनकी दूसरी होती हैं, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप कहते हैं इतनी सी बात पर आपको गुस्सा आ गया, वो आपके लिए इतनी होती है, लेकिन उसकी वो दुखती रग होती है, उसका वीक पॉइंट होता है, तो उनको ढूंढें, फिर वो सिचुएशन क्रिएट करने से अपने आप को दूर रखें जिससे गुस्सा आए। फिर इसी तरह ये है कि जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाए, ये जब ठंडा हो जाए उस वक़्त फिर उनको बताएं। कुछ बातें उस वक्त बताने की प्लीज़ ये मोटा करके लिख लें, ये उस वक्त बतानी है जब बताने लगी हों। अगर आपने गुस्से में बता दी तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा। पहली बात है कि आप उनको बताएं कि आपको जब गुस्सा आया था तो आप बड़े खौफनाक लग रहे थे, बड़े बदसूरत लग रहे थे, हैं, आप बड़े खौफनाक लग रहे थे, हैं। फिर उस वक़्त उनको बताएं कि आप उस वक़्त जिस तरह कर रहे थे, हो सकता था उस वक़्त आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता, आपको हार्ट अटैक भी हो सकता था, ये प्लीज़ बाद में बताएं। पानी भी पेश कर सकते हैं लेकिन प्लास्टिक के ग्लास में, स्टील या शीशे में करेंगे तो नतीजे की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। फिर इसी तरह उनको समझाएं, फिर उन्हें कहें कि आप माफ़ी मांगें, बाद में इस तरह बताएं कि आप ऐसा करेंगे तो बच्चों पे कितना इसका असर होगा, यानी दूसरों पे भी उसका असर है, बाद में उसको बताएं इस तरीके से इंशाल्लाह ताला। फिर इसके बाद ये है कि उनके लिए दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इनके दिल का गुस्सा ठंडा कर दे। फिर इसी तरह घर का कोई फ़र्द है तो उनके खाने पीने में ऐसी चीज़ें डालें जो ठंडे मिजाज वाली हों, गर्म चीज़ें ना दें, बहुत हैवी ना फूड दें, मीट ना ज़्यादा दें, ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह फ़ायदा देंगी। इसी तरह अपना गुस्सा दूर करना चाहें तो पहले तो माने कि मैं गुस्सा करती हूँ, फिर दूसरी बात है कि गहरा सांस लें, इस तरह से होता है ना, इससे बंदा अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करता है। फिर इसी तरह आप देखें कि जिस बात पे गुस्सा आ रहा है उसको भुला के कोई और अच्छी बात सोचें, अल्लाह ताला से मदद मांगें, दुआएं भी हैं जिसमें गुस्से पे काबू आप पा सकते हैं। फिर इसी तरह आप देखें कि आम हालात में जब आप बैठी हों तो सोचें कि अमूमन मुझे किस बात पे गुस्सा आता है। बस अगर मैं आपसे ही पूछना शुरू कर दूं, मैंने एक क्लास में बच्चियों से पूछा था तो उन्होंने मुख्तलिफ रीज़न्स बताई थी, अम्मी को गुस्सा आता है जब हम काम नहीं करते, किसी ने कहा गंदा घर होता है, ये वो, उस वजह को सोचें, फिर अपने आप को रिहर्सल करवाएं कि अच्छा वो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है और मैंने अपने आप को रोकना है, यानी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को जितना रोकेंगे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह देखें कि कोई मसरूफियत ढूंढें, जो लोग फारिग रहते हैं ना उनको बहुत गुस्सा आता है, जो मर्द घरों में होते हैं कहते हैं लड़ाई नहीं ख़त्म होती वहाँ से, क्योंकि उनके पास मसरूफियत कोई नहीं होती। फिर इसी तरह गुस्सा आए लेकिन ज़ुबान का इस्तेमाल ना करें, पी जाएं, कहाँ से मीनल गई से पी जाओ, अंदर रखो इसको। फिर इसी तरह आप देखिए कि गुस्से के वक्त आईना देख लें और जो शक्ल आपको अपनी दिखेगी उससे इतना खौफ आएगा कि आइंदा कभी भी आप गुस्सा नहीं करेंगे। आपको तक कि गुस्से से बंदा बूढ़ा जल्दी हो जाता है, करख्तगी आती है, झुरियाँ पड़ जाती हैं, इंसान की ब्यूटी स्किन की ख़त्म होती है, आवाज़ कितनी बुरी हो जाती है, ऐसे लोगों के मिजाज में सख्ती आती है, ये सारी चीज़ें देखें। आप महसूस करेंगे कि आपको उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह अपने अंदर हिल्म पैदा करें, वो लोग उन लोगों से मिलें जो बहुत ठंडे मिजाज के लोग हैं। और बाकी ये है कि आप ऑडियो सुन लें, इससे आगे मैं बताऊंगी तो फिर पारा तो बिल्कुल भी पूरा नहीं होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जन्नतियों की जो खूबियाँ आपने हमें इसमें दिखाई हैं वो हमें भी अपने अंदर लाने वाला बना दे। आप सोचिए जन्नत में कोई गुस्से वाला नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो वहाँ जन्नत में दूसरों का हाल ख़राब कर देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये सारी खूबियाँ जिनका तज़किरा हमने इधर किया और सुना, इन सब से हमें महफूज रखे। फिर उसके बाद दोबारा ग़ज़वे उहद ही की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है।